नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शोपानिया के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एश्विले और न्यूयॉर्क जाएंगी। यह यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को सम्पन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को खोलना है। उन्होंने दूसरे देशों को भी चेतावनी देते हुए ईरान के साथ आर्थिक संबंध सीमित रखने को कहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमरीका की चेतावनी को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को रोकने की स्थिति में नहीं है। श्री गालिबाफ ने कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने भी अमरीकी बयानों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए नई प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में खेलो भारत अभियान पर भी चर्चा की गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया की कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माही और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।